نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دم ذریعہ علاج آج ہم اس میں دیکھیں گے نفسیاتی بیماریوں کا علاج چوتھی قسم ہے جو اس وقت ہم بیماریوں کی دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی کیا تھی جادو دوسری کیا تھی جادو حسد اسی کے اندر نظر بد تھی تیسرا جنوں کا چمٹنا اور آج ہے نفسیاتی بیماریوں کا علاج پیج نمبر 23 ہے حقیقت ہے کہ آج کے دور میں جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا نفسیاتی کا لفظ نفس سے ہے اور نفسا کہتے ہیں سانس لینے کو بلو کرنا ینصف یا نصفا تو نفس کیا ہے وہ انسان جو زندہ ہے میت کو نفس نہیں کہیں گے اب انسان کے جسم میں تین قسم کے نفس ہوتے ہیں وہ چیز بھی آپ سیکھ چکے ہیں اس موضوع کو یہاں کتاب کے اعتبار سے پڑھ کر پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آج کے دور میں ہمارے اوپر نفسیاتی حملے زیادہ ہیں آئیے تھوڑا سا پہلے کتاب کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج نفسیاتی بیماریاں اور سینے کی تنگی کا بہترین علاج مختصر طور پر ذکر کیا جا رہا ہے نمبر ایک ہدایت اور عقیدہ توحید کو اپنائے کیونکہ گمراہی اور شرک سینے کی تنگی کا بنیادی سبب ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ سچے ایمانی نور جو اللہ دل میں ڈالتا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام کریں پھر تیسری چیز ہے مفید علم کا حصول جس بندے کا علم جتنا وسیع ہوگا اس کا سینہ بھی اسی کے مطابق وسیع ہوتا ہے چوتھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ رکھے دل کی گہرائیوں سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے نیز عبادات کر کے نعمتوں کا اقرار کرے اور اللہ کی عبادت کو بہت بڑی نعمت سمجھے پانچویں چیز ہر حال اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے سینے کی کشادگی روحانی نعمتوں کے حصول پریشانی اور غم کو دور کرنے میں ذکر کا عجیب اثر ہوتا ہے چھٹی چیز مخلوق ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس میں انسان اور اس کے بعد دوسری بھی مخلوقات آتی ہیں ساری قسم کے لوگ مخلوق ربانی پر مختلف طریقوں سے احسان کرے اور ممکن حد تک انہیں فائدہ پہنچائے نیکی کرنے والوں میں سب سے معزز مزاج کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ اور دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فراخ دل ہو ساتویں چیز ہے بہادر ہو کیونکہ بہادری سینہ کھولتی اور دل کو وسیع کرتی ہے آٹھویں چیز دل سے بری عادات کا گند نکالے جو دل کی تنگی اور اس کے عذاب کا باعث بنتی ہیں مثلا حسد بغض کینہ دشمنی سرکشی وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انسانیت میں سب سے افضل شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون ہے یعنی سب سے زیادہ لوگوں میں سے فضیلت والا شخص کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان آپ ذرا دہرائیں یہ چھوٹی سی حدیث ہے اس کو یاد کر لیں کل مخموم القلب صدوق اللسان کل ہر مخموم مخموم القلب مخموم القلب جس کے دل میں درد ہو نرم خم کیا ہوتا ہے جھکنا تو دل کا جھکا ہوا یعنی نرم بندہ جس کے دل میں سختی نہ ہو درستگی نہ ہو اور صدوق اللسان سچا زبان میں ایک ہوتا ہے صدق صدوق فاعول کا وزن ہے بہت سچا سب سے سچا جیسے شکور صبور تو صدوق وہ شخص جو جھوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا تو زبان کیسی ہو بہت سچی ہو کیا فرمایا آپ نے ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا صحابہ نے پوچھا زبان کا سچا تو سمجھ میں آیا مگر مخموم القلب کون ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے تو فرمایا آپ نے فرمایا ایسا متقی پاک باز جس میں گناہ سرکشی کینہ اور حسد جیسی بیماریاں نہ ہوں یعنی متقی جس میں تقویٰ ہو پاک باز جو اپنے نفس کو بھی پاک رکھے اور کے بعد دیکھیے گناہ سرکشی کینہ اور حسد جیسی برائیاں نہ ہوں اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ سب کچھ نکل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا مومن آپ ذرا محسوس کریں ایک ایک چیز کو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کی اتنی کٹھی پڑھ لوں جو آج کی نشست میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں نویں چیز پہلے دیکھ لیں بدگوئی بد نظری برا سننا بے فائدہ محفلوں میں شرکت زیادہ کھانا اور سونا یہ سب چھوڑنے سے سینہ کشادہ ہوتا ہے اور روحانی نعمتیں میسر آتی ہیں نیز پریشانی اور غم دور ہوتے ہیں دسویں چیز ہے مفید علم یا عمل میں مصروف رہے کیونکہ اس سے انسان پریشانی اور برے اعمال سے محفوظ رہتا ہے۔ گیارہویں بات ہے، آج کا پروگرام بنائے، آئندہ کی منصوبہ بندی سے گریز کرے، گزشتہ پر پریشان نہ ہو، آدمی دین اور دنیا میں مفید کاموں کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد میں کامیابی اور اس میں مدد کی دعا کرے، کیونکہ یہ کام پریشانی اور غم سے محفوظ رکھیں گے۔ اور بارہویں چیز کیا ہے، صحت اور رزق وغیرہ میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے برتر کو نہ دیکھے۔ تیرہویں چیز ہے، ماضی میں ہونے والی برائیوں کو بھول جائے، جنہیں لوٹانا یا ان کا کفارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ چودھویں چیز، اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے کم کرنے کی کوشش کرے، جس بری بات کا احتمال ہو، احتمال مین حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، تو احتمال اٹھانا یعنی مین جس بات کا امکان ہو، جس بری بات کا امکان ہو کہ وہ فرض کرے کہ اس برے کام کی وجہ سے معاملہ یا مصیبت یہاں تک پہنچا ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ پندرہویں چیز کیا ہے، کہ دل کو مضبوط رکھے، وہم اور فضول خیالات سے پاک رکھے، کیونکہ اس سے بری سوچ جنم لیتی ہے، غصے سے باز رہے، ایسے کام نہ کرے جس سے پسندیدہ ماحول ختم یا ناپسندیدہ حالات پیدا ہوں، اپنی زندگی کے لیے مفید کاموں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتا رہے۔ سولہویں بات ہے، اللہ تعالیٰ پر دلی اعتماد، توکل اور حسن ظن رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے پر اوہام یعنی وہم اثر پذیر نہیں ہوتے، یعنی وہ بندہ وہمی نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد سترویں چیز کیا ہے، ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اس کی صحیح زندگی پاکیزگی اور اطمینان ہی کی حالت میں گزر سکتی ہے۔ اس زندگی کا عرصہ بھی بہت تھوڑا ہے، غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہ کر اپنی زندگی میں مزید کمی نہ کرے، کیونکہ یہ تندرست زندگی کے منافی ہے۔ بس اتنی چیزیں آج ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی بہت ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک سٹریچ میں پتہ کیوں پڑھی ہیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ میں پڑھ رہی تھی نا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا اسلام اے ٹو زی۔ ٹکڑوں میں بٹا ہوا جو اسلام ہوتا ہے نا، کبھی عقیدے میں کمی ہے، کبھی سوچ پاک نہیں ہے، کبھی پیٹ پاک نہیں ہے، کبھی رزق پاک نہیں ہے، کبھی ذہن پاک نہیں ہے، کبھی نظریں پاک نہیں ہیں، کبھی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو کبھی گندا بول رہے ہیں، تو کبھی گندا سن رہے ہیں۔ ان سب کا آفٹر ایفیکٹ، دا لاسٹ، یعنی آپ کہہ لیں کہ ان سب کا آخری نتیجہ جو آپ دیکھیں گے، وہ نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں دیکھیں گے۔ نفس کیا ہے؟ انسان کا نفس۔ دیکھیے، ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہمارا جسم ہے جو آپ کا، مجھے آپ کا دکھتا ہے ایک خاص حد تک باہر سے، اور اندر اسی کے اندر آرگنز ہیں جو سب کے ایک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے اندر روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا، تو پہلے آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں ثم نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے پھونک دی اس میں اپنی روح۔ آدم علیہ السلام کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، تو وہ جو دوسری چیز تھی نا، وہ اسپرٹ ہے، جس کو سول کہتے ہیں۔ زندگی بھر یہ جسم اور روح آپس میں ملے رہتے ہیں، تو ہم زندہ ہیں۔ جس دن جسم اور روح کا سلسلہ ٹوٹتا ہے یا یہ رشتہ منقطع ہوتا ہے، جسم ہمارے ہاتھوں میں رہ جاتے ہیں، روح اللہ جو اپنی طرف سے بھیجی تھی وہ واپس لے لیتا ہے۔ اب یہ دو چیزوں کو سمجھ لیجئے، دونوں مختلف جگہ سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ جسم مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں کو کھا کھا کر پروان چڑھتا ہے، دودھ، گھی، لسی، جو بھی آپ سبزی گوشت کھاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے زمین سے آتا ہے۔ ہم نہیں کھاتے تو جانور کھاتے ہیں، تو اس کا پھر ہم گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو جسم کا جو رجحان ہوتا ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری روح ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے اندر فطری طور پہ نیکی کا جذبہ ہے، شوق ہے، اس کو ہماری روح کی غذا چاہیے۔ اور نفس کی یا روح کی جو غذا ہے نا، وہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ یہاں نفسیاتی بیماریاں پڑ رہے ہیں، یہ وہ بیماریاں جو ہماری روح کو لگتی ہیں۔ آپ سمجھیے گا اس کو، جسم بیمار ہوا، ڈاکٹر پہ چلے گئے، حکیم صاحب کے پاس چلے گئے، طبیب کے پاس چلے گئے، آپ نے ایلوپیتھی علاج چوز کیا، آپ نے ہومیوپیتھی چوز کیا، اٹس اپ ٹو یو۔ اس کے لیے پیراسیٹامول کھا لیجیے آپ، اس کے لیے جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کھا لیتے ہیں، سب پہ ایک ہی طرح کی اثر انداز ہوگی۔ مسلمان پیراسیٹامول کھاتا ہے یا ایک نان مسلم پیراسیٹامول کھاتا ہے، دونوں پہ دوا کا اثر ایک ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ दूसरी तरफ अगर आप आते हैं ना नफसियाती बीमारियों पे, पैदा होने से लेकर बच्चे के जुबान खुलने तक सब एक ही जैसे होते हैं। बच्चा वही बोलता है जो अल्लाह ने उसको सिखाया, बच्चा वही खाता पीता सोता है। किसी बच्चे ने पैदा होने के बाद शराब के घूंट की तलब नहीं रखी, इल्ला ये कि उसकी माँ ने उसको प्रेगनेंसी में आदी कर दिया हो। अब जब हमारी रूह को अल्लाह की जात नहीं मिलती, पहली चीज देखी ना, हिदायत और अकीदा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इतनी बड़ी दौलत है कि जो इंसान को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करती है, ऊपर करती है, ऊपर करती है। आप 10 बुरी बातें सुनते हैं, आपका घर काम से भरा पड़ा है, नागवार हालात है, किसी ने आपको कोई ऐसी बात कह दी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो बोलेगा, और आप इन सब हालात में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, ये मैं क्या करूं, मेरे बस से बात ऊपर है, अल्लाह मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह मैं इस इंसान को नहीं बदल सकती, अल्लाह ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं। उस वक़्त जब आप अकीदा तौहीद को पुकारते हैं ना, आप फील करेंगे आपके अंदर एक एनर्जी भरेगी, ताकत। इतना ज़्यादा तौहीद बंदे को मजबूत कर देती है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं होना। अब आपने तो सिर्फ एक जुमला सुना है ना कि हिदायत और अकीदा तौहीद अपनाए, आप कहेंगे वो तो हम शुरू से करते हैं, क्या मतलब है 1,25,00,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूँ तस्बीह पे, क्या मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को लिखकर अपने गले में लटका लूं? नहीं, देखिए जब आप एक तौहीद का अकीदा अपनाते हैं ना, तो वो कुरान की सारी आयतें आपकी आंखों में आ जानी चाहिए, कुल हुवल्लाहु अहद से लेकर, जिसमें आप देखिए कि मुझे वो आयत इस वक्त याद आ रही है जो सूरत अनाम में भी है और सूरत जुमर में भी है गालिबन, यानी आखिरी सूरतों में भी है, शुरू में भी है, कि यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ देना चाहे कोई नहीं रोक सकता सिवाय उसके, वो ही जब चाहता है तो दुख दूर होते हैं, बीमारी भी तभी जाती है जब अल्लाह कहता है जा अब तू जान छोड़ इसकी, और जब तक अल्लाह ना कुछ दे नहीं मिलता। मेरी नज़र में अकीदे तौहीद यहाँ से शुरू होता है, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है, दुख सुख उसके हाथ में, मेरी सारी डोरियाँ उसके हाथ पे बंधी हुई हैं और मैं कठपुतली की तरह दुनिया में चलती फिरती हूँ, असल मेरा मालिक ऊपर है। कभी आपने पुतली तमाशा देखा होगा बचपन में, ऊपर बैठकर हाथों में डोरियां बांधी होती थी और लकड़ी की पुतलियों को हिलाते थे, तब ये कार्टून वगैरह और ये कुछ मिकी माउस नहीं थे ना कि वो स्क्रीनों पे घुमा घुमा के बच्चों को हैरान करें, तो वो बैठे वाले सोचते थे ये लकड़ी की पुतलियां चल फिर रही हैं, लेकिन ऊपर से वो पतली पतली डोरियां ले, और वो आदमी इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो इतनी तेजी तेजी से हिलाते थे कि लगता था वो बोल रही है, मुंह हिलाया तो मुंह बोल रहा है, पट 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 जैसे पपिट होते हैं। देखा जाए तो हम सब भी इस दुनिया में एक पुतली तमाशा ही है। कहिए कि मेरे हाथों की डोरियां मेरे रब के साथ जुड़ी हुई हैं, मेरी जुबान खुलती कब है जब रब चाहता है, मेरी जुबान की गिरें खुलती तब है जब मेरा रब चाहता है। जिस दिन आप अल्लाह के साथ इस दर्जे के ऊपर अपना ताल्लुक महसूस करते हैं, नफ्सियाती बीमारियां सब किक आउट, मुझे जरूरत ही नहीं है मैं किसी साइकेट्रिस्ट के साथ जाके दुख सुख क्यों खोलूं, वो क्या करेगी, मैं तो इससे बेहतर है उसे 1 घंटे में उसको रब की बात बताऊं कि तू भी अपनी नफ्सियाती बीमारियों का इलाज कर ले। सबसे बड़ी बीमारी जो किसी इंसान को लगती है ना, वो शिर्क और कुफर की बीमारी है। इस चीज को आप महसूस कीजिए और आप यहां से बतदरीज देखते जाइए, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं आपके लिए मैं दोहरा देती हूं ताकि आपको एहसास हो कि एक अच्छा किरदार, एक मुस्लिम करेक्टर असल में नफसियाती बीमारियों का शिकार नहीं हो सकता। सबसे पहले देख लीजिए तौहीद है, फिर अमल सवाले, अगर आप इसमें से सिर्फ वो लफ्ज़ हाईलाइट करें ना जो आपको पॉइंट करा रही हूँ, तो फिर आपको ये पूरा फिक्रा भी ना याद रहेगा ना, तो लिस्ट बनेगी। तो नंबर 1 पॉइंट में से बस अकीदा तौहीद का लफ्ज़ हाईलाइट कीजिए, हिदायत कर लें साथ बेशक आपका दिल करे। नंबर 2 पॉइंट में आप सिर्फ अमल सवाले के लफ्ज़ को हाईलाइट कीजिए। नंबर 3 में सिर्फ मुफीद इल्म का हसूल, सच बताइए ये फ़ायदा मंद इल्म है जो आप सीख रहे हैं। आप यहाँ सुबह से रात तक आएँ या आप सुबह से लेकर 2 घंटे बैठें, कभी आपको ये एहसास हुआ यहाँ बैठ कर के जो इल्म दिया जा रहा है वो फ़ायदे का नहीं है, आपको वो बातें सिखाई जा रही है जो आपके काम कभी आनी है नहीं आनी पता नहीं, कभी लगा? 2 दिन पहले मेरी किसी से बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको भी यही बात कही थी, मैंने कहा मैं गवाह हूँ इस बात की कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ जिस जुबान में भी कोई क्लास होती है, लेकिन उसमें लोगों को वही बात सिखाई जाती है जो उनकी डे टू डे लाइफ की है। देखिए अकलमंद वो है जो अपने घर में वो चीज़ें रखे जो इस्तेमाल की है, चीज़ ले ले इस्तेमाल वाली, बेकार चीज़ें ला के घर भर दें और ज़रूरत की चीज़ें ना हों या जगह ही ना बचे या पैसे ना बचे तो ना समझिए ना। आज हमारे बच्चों ने और हमने खुद भी बाज दफा वो उलूम सीखे 15 20 20 साल स्कूलों में जाकर, आज तक प्रैक्टिकली उसको नहीं जाके चेक किया। मतलब आप देखिए, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अब एक औरत जिसकी शादी होती है, उसके बच्चे हैं, उसको ससुराल में रहना है, उसको जीना है, उसको ज्योग्राफी कितना को फायदा देती है। जग्राफिया बोलते थे उर्दू में, उस किताब के जुमले आज भी याद है, जमीन का रकबा इतना है, सूरज का चांद से इतना फासला है, एक सूरज है एक चांद है, घूम रहे हैं, वहां जमीन पथरीली है वहां खुश्क है। ना भी पता हो तो क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे नॉर्वे में देख लेंगे, यहाँ पहाड़ है, अरब में जाएंगे देखेंगे रेत है रेगिस्तान है, पाकिस्तान में जाएंगे तो मैदानी इलाके है ना। डायरेक्टली हमें लफ्ज ज्योग्राफी वो इल्म पढ़ने से फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा इल्म तो इल्म ही होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। इसी तरह आप देखिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, प्रैक्टिकली डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ऐसी बच्चियां जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के फार्मूले याद कर करके पागल हो जाती हैं, उनको एक अच्छी बीवी नहीं बनना आता, उनको सब्र नहीं आता इंसानों के मामले में, शुक्रगुजारी का एक लफ्ज नहीं है उनके दिल में, उनको सब्र नहीं आता, बर्दाश्त नहीं आती, उनको आजजी नहीं आती, तो आप क्या कहते हैं कि वो इल्म नाफे है? ये मैं कहना चाह रही हूं। आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां नफसियाती तौर पे मजबूत हों, आप खुद हों, आप वो इल्म लीजिए जिसमें फायदा है। कुरान फायदामंद इल्म है, हदीस फायदामंद है, सीरत फायदामंद है। रोज तकरीबन मैं घर जाती हूँ ना तो आपके सर मुझे पूछते आज क्या पढ़ा, उनको पता भी होता है, बाज दफा वो खुद भी सुन सकते हैं, लेकिन वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि पहले जाकर शुरू में ये किताब थी, फिर सीरत पढ़ाई। आजकल बताते हुए मुझे खुशी क्यों होती है सर कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में देखे दुआएं भी हैं। अब ये हम बीमारियों के इलाज में हदीसें भी साथ सीख रहे हैं, फिर सीरत पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद सही बुखारी होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेशंस होते हैं, फिर शाम की क्लास है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक लफ्ज कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती कि मैंने फैशन सिखाया, मैंने कपड़े सीने सिखाया, हालांकि वो भी कोई बुरी बात नहीं थी अगर वो, लेकिन डायरेक्ट एक एक मिनट जो इस्तेमाल होता है आपकी क्लास का वो इल्म नाफे में होता है। इसके लिए तो आप, मैं कहती हूँ, 2 घंटे दूर भी जाके रोज आ जाएं तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, फायदा मिल रहा है आपको। इसके बरक्स आप देख लीजिए, घंटों के एतबार से दूर, शहरों के एतबार से फासले, दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में जाते हैं एक उम्मीद पर कि डॉक्टर बन जाएंगे तो इससे फायदा उठाएंगे। एक बच्ची डॉक्टर बन गई, 5 6 साल उसने जुदाई काटी, वो अकेली रही, अकेली गई, जो भी किया, बाद में शादी, ससुराल वाले कहते बैठो आराम से बच्चे पालो, कोई क्लिनिक नहीं कुछ नहीं, किधर गया वो 6 7 साल का मुजाहिदा? बात समझ रहे, बनेगी तो फायदा। मैं नहीं कह रही डॉक्टरी बुरी है, लेकिन मैं समझा ये रही हूं कि हर बर्तन हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होता, पड़े रहते हैं, इसी तरह हमारे बहुत सारे उलूम भी पड़े हुए हैं, हम उसको लेके नहीं चलते, लेकिन ये जो मुफीद इल्म आप ले रहे हैं, और दुनिया का भी लीजिए, फायदामंद इल्म ले, जब कोई सब्जेक्ट चूज करें तो सोचें इससे फायदा किसको होगा। बाज इतने बेकार सब्जेक्ट्स हैं आप सोच नहीं सकते कि लोग उसके अंदर इतना वक्त लगाते हैं, और मैं सोचती हूँ कि इससे आधा वक्त भी ये कोई और ही फायदे वाली चीज पे लगाते हैं तो कई इंसानों को फायदा देते। तो बहरहाल तीसरी चीज फायदामंद इल्म है। फिर इसी तरह से चौथी चीज है अल्लाह से मोहब्बत करके तो देखें। अब ये आप जब लिस्ट बनाएंगे ना तो पहले अकीदा हिदायत है, फिर अमल साले है, फिर मुफीद इल्म है, फिर दिल की गहराई से अल्लाह से मोहब्बत है, उसकी तरफ तवज्जो है, फिर पांचवी चीज में हाईलाइट कीजिए लफ्ज जिक्र को। जिक्र हर वक्त आपकी जुबान जिक्र से तारो, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। आपकी करवटों पे आपके लोग गवाहियां दे कि आप सोते में इस्तग़फार पढ़ रही थी, आप कलमा पढ़ रही थी रात को, क्योंकि अल्लाह तआला कहते हैं अला जुनूबिहिम क़ियाम वक़ूद वला जुनूबिहिम वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाती वल अर्द। तो जिक्र रखिए, देखिए इससे बातें कम हो जाएंगी, चुगलियां कम हो जाएंगी, किसी की शिकायत लगानी है कम हो जाएगी, तो दिल के अंदर आपके सुकून आएगा। फिर इसी तरह छठी चीज है एहसान, मखलूक पर एहसान, किसी भी तरह लोगों को फायदा दें, लोगों के फायदे के बन जाएं। देखिए ये वो चीज है जिसको कोई कंपीट नहीं कर सकता। वम ममा यन्फउ नासु फयम को सूरत रात की आते हैं, जो लोगों को नफा देगा वो फायदा पाएगा, वो बचेगा, फायदे वाले बने। खुद से पूछिए मेरी जात से कितनों को फायदा हो रहा है, किसी को फायदा दे रही हूं कि नहीं दे रही। फिर सातवीं चीज बहादुर, बी ब्रेव, डोंट बी कावर्ड। बहादुरी सीना खोलती है, जरूरत होती है ना, कर लेंगे जी हो जाएगा, और हर वक्त मारे मारे फिरे ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, सोचते हैं, देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे आप, बहादुर बने। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, वॉक करते हैं, हो जाएगी, रेस लगाते हैं। अच्छा, बहादुरी कई तरह की होती है ना, फिर जिस्मानी तौर पे वॉक करना है लेके, या मेहनत करनी है, फर्नीचर मूव करना है, कर लेंगे जी, किसी से जाके बात करनी है, कर लेंगे जी, बहादुरी कहती है जुर्रत, दीन का इजहार करना है, कर लेंगे, किसी को जाके अच्छी बात बतानी है, बता देंगे, यानी खुला दिल होता है, बहादुर बंदे का दिल खुल जाता है। फिर इसी तरह से आठवीं चीज है कि बुरी आदत को निकाल दें। हम सब चुने, दाल के अंदर से जैसे वो कंकर निकालते हैं ना, इस तरह अपनी बुरी आदत को निकालें, और उसकी लिस्ट मौजूद है। किसी से हसद तो नहीं करती, क्यों करूं मैं हसद? ऊपर पहली चीज पे चले जाएं, जब मेरा रब देता है तो फिर मैं रब की बांट पे किसी से हसद करूं? किसी को अल्लाह ने बेटे दिए, आपको नहीं दिए, तो किसका फैसला है? किसी को खूबसूरती दी, आपको नहीं दी, तो किसका फैसला है? तो हसद निकाल दें। बिलीव मी, ये वो जंजीरियां हैं जिसमें हम बांध कर अपनी रूह को दबा लेते हैं, फिर इसका नतीजा होता है कभी स्ट्रेस में, कभी डिप्रेशन में, कभी हिस्टेरिया की सूरत में, और ये सब कुछ ज्यादा खाते पीते लोगों के मरज हैं। आप नोट की, जहां दुनिया ज्यादा होगी, मादा प्रस्ती ज्यादा होगी, कैट रेस होगी, भागो भागो रैट रेस कह लें या कैट रेस कह लें, वहां ये बीमारियां ज्यादा होंगी। गरीब मुल्कों, गरीब इलाकों में, गांव में, मट्टी में पड़े हुए, कोई नहीं हसद करता, कहते जो हैं सारे एक ही जैसे। आप जितना ऊपर जाएंगे, और बड़े लोगों का हसद भी बड़ा बुरा होता है, ओहदों का हसद, मशीर और वजीर होने का हसद से लेकर सब चीजें निकाल के फेंकिए। मेरी इतनी थोड़ी सी जिंदगी है, जाया करके चली जाऊंगी, बुगज रखूंगी दिल में, कीने रखूंगी, दुश्मनियां पालूंगी, सरकशी करूंगी, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास कोई वक्त नहीं है इन चीजों का, सॉरी मैं नहीं कर सकती। अपने आप को आजाद करें, और आप देखिए इससे खूबसूरत करेक्टर बिल्डिंग कौन करेगा? असल ये चीजें हैं जो आपको लोगों का भी पसंदीदा बना देंगी, आप खुद भी खुश रहेंगे और रब भी आपसे राजी रहेगा। और इसी में आप देख लीजिए कि मखमूमुल कल्ब बनने को अपने लिए हाईलाइट कर लें कि मैंने ये जरूर करना है, और सदूकुल लिसान भी होना है इंशाल्लाह, सच्ची जुबान हो। फिर उसके बाद देखिए नवे लफ्ज में देखिए, बेफायदा महफिलों से शिरकत, यानी आप इस सारे को जमा कर दीजिए कि लगवियात से मुंह मोड़ लें। आज उम्मत खोई भी ऐसी चीजों में। मैं कहती हूं कि अब तो ये छुट्टियों के जो आखिरी 4 दिन है, लोगों का बस नहीं चल रहा कि खींच के इनको लंबा कर दें, जो नहीं किया वो भी कर लें, कि हाय अगले हफ्ते स्कूल खोल रहे हैं। एक माँ कल कहती है, बच्चा मेरा बैठा वीडियो देख रहा था कुछ भी ऐसे, तो मैंने रिमोट कंट्रोल छुपा दिए, और वो घुपला मुपला सा है, तो वो कहती है मेरे पास आके, कहता है मामा 4 दिन तो रह गए हैं, खेल लेने दें हमें वीडियो गेम्स, प्लीज मुझे दे दें। वो कहती है ऐसे मिन्नतें कर रहा था मेरे पास, क्या मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं तो मुझे थोड़ा सा और खेलने दें। मैंने कहा आजकल तो मुझे सबकी यही हालत दिख रही है। 3-4 लोगों से मेरा मिलने का मौका हुआ, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस किया कल, फिर कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी। तो वो एक सिस्टर थी, तो वो कहने लगी बच्चों को लेकर 2 दिन के लिए किसी जगह गए थे, फिर आगे स्कूल खोलने हैं ना, फिर स्कूलों में पूछते भी तो है ना आप कहाँ गए थे, तो हमने कहा चलो 2 दिन के लिए एक रात का होटल कराया, और बच्चे बता सके हम वहां गए। कितना डरते हैं हम माहौल से, हालात से कितना डरते हैं। बहरहाल यानी कोई बुरी बात नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल सबका माइंड सेट एक ही चल रहा है, तो वक्त जाया ना करें, शायद हमारा भी वक्त खत्म होने वाला है, शायद हमारे भी अब दुनिया से जाने के दिन गिने जा चुके हैं, शायद फरिश्ता रोज आके हमें झांक जाता है कि बस इतने दिन रह गए इनके, ये पता नहीं अभी भी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंगें करती फिर रही हैं। अपने आप को हमेशा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पे सोचे। फिर इसके बाद आप देखिए मसरूफ रहे, बेकार जहन, कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप, मसरूफ हो जाए। नफसियाती बीमारियां होती बेकार लोगों के, दिन रात मसले आते रहते हैं। तो मैं कभी शेयर करूं ना अपने हस्बैंड से, तो वो हर बात का एक ही जवाब देते हैं, लोगों से कहो मसरूफ हो जाए, उन्हें कहो सूरत मुल्क हिफ्स करें, सूरत हदीद हिफ्स करें, फला सूरत हिफ्स करें। मैं कहा उनके घर में मुसीबतें पड़ी हुई हैं, वो अब सूरत हिफ्स करेंगे, आपका ख्याल है कि वो आएंगे? लेकिन इट्स ट्रू, बिजी करें अपने आप को भी। घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मियाँ बीवी की नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा, कुरान पकड़े वहां कोने में जाके बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, याद ही नहीं रहेगा थोड़ी देर में। बिलीव मी, आज हम अपने आप को घरों में रख रख कर रोगी कर रहे हैं। किसी को मसला महसूस होते ना, पस्ता पकड़े आके बैठ जाए, जो हो रहा है इधर वो करना शुरू कर दे, याद ही नहीं रहेगा कि घर में क्या हालात है। हम फारिग रह रह कर जंग लग जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि जंग लगा रहे हैं बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को, और मुझे ऐसे एहसास होता है अपने इर्द गिर्द कुछ चीजों को देखकर कि लोग सिर्फ अपनी मौत की गाड़ी के आने के मुंतजर हैं। बैठे बैठे बैठे, कब आएगी मैयत गाड़ी, हम उसमें सोएंगे लेटेंगे फिर हमें कब्रिस्तान में डाल आएंगे। कोई मकसद नहीं, कोई जिंदगी का हलचल नहीं, कोई गम नहीं, कुछ नहीं, बस जो हो रहा है तो होने दीजिए, मसरूफ कीजिए, फारिग हैं इसलिए हम परेशान हैं। फिर कहते हैं हमारे परेशानी पड़ी है, दिमाग में बोझ है, दिल खटता है, दिल घबराता है, धड़कन तेज हो जाती है, ये सब नफसियाती बीमारियां हैं। आप फारिग करें, आप लोग हैरान होंगे कि हमारा जिस्म अंदर से अल्लाह ने कैसा मैन्युफैक्चर किया है। हर वो चीज जो आज हम सुन्नतों में पढ़ते हैं ना, वो सब हमारे जिस्म को पहले ही पता है। कल रात एक किसी ने एक मैसेज भेजा हुआ था, कल पढ़ा मैंने बहरहाल, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था, लंबा किसी वक्त पे पढ़ के भी सुना दूंगी, तो उन्होंने बताया कि रात को हमारे दिमाग में से ग्लैंड निकलता है, मतलब ग्लैंड से समझे वो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे लुब्रिकेशन होता है ना पानी की तरह, तो वो सिर्फ रात को निकलता है, उसने दिन में नहीं आना, जिसमें एंटी कैंसर होते हैं। एंटी कैंसर से मुराद के वो जिस्म के अंदर वो चीजें डालता है कि जिससे कैंसर नहीं होगा, लेकिन उस ग्लैंड की एक आदत है, वो रोशनी में काम नहीं करता। जब हमारी आंखों के कॉर्निया के आगे बिल्कुल अंधेरा होता है ना, तो वो फिर चुपके से आता है और हमारे जिस्म में वो ग्लैंड्स डाल के चला जाता है। अब उन्होंने ये बताया था कि और ये कब काम करता है, एग्जैक्टली वो टाइम जो मोस्टली रात की इशा से लेकर मिड नाइट तक का होता है, दो तहाई के बाद। कहते हैं सिर्फ इन्हीं घंटों में इसने रात को काम करना होता है, और उस वक्त अगर बंदा जाग रहा है तो आंखों में रोशनी है, तो उस ग्लैंड को ये नहीं पता चलता कि रात है कि दिन है, तो वो काम नहीं करता, वो सोचता है दिन है। तो जो लोग रातों को जाग रहे होते हैं ना, उनका वो ग्लैंड जो है वो काम करना छोड़ देता है और वो फिर उसे रिलीज नहीं करता। और ये जो हुक्म है कि नबी सल्लम दो तिहाई के बाद जाग जाते थे, ये हिकमत है कि रात का ये जो मिड टाइम वक्त है ईशा की नमाज से आखिरी पैर, इसको सो जाओ। अब आज देखिए हमारे घरों के माहौल क्या बने होते हैं, रातें जागो दिन मुर्दों की तरह सो जाओ। तो उन्होंने लिखा था कि जो लोग रात देर तक जाग रहे हैं और फिर सुबह देर तक सोते हैं, वो अपने आप को खुद कैंसर का शिकार कर रहे हैं। किसने बनाया कैंसर, और किसने बनाया ये ग्लैंड, और किसने कहा नबी को कि लोगों से को जल्दी सो जाओ जल्दी उठो, एक ही है ना जात। तो ये बात अगर सच है तो इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है, अल्लाह ने मैन्युफैक्चर किया उसको पता है, और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो भी हमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि रात जल्दी सो जाओ सुबह जल्दी उठ जाओ, इसमें हमारे लिए खैर जरूर है। आज घरों के नक्शे तो देखिए, और छुट्टियों में तो खुदा की बना छुट्टी है छुट्टी है भाई, आप सोएंगे फजर से भी छुट्टी है। एक बच्चे थे घर में, मैं गई थी तो छोटे बच्चे बड़े उछला कूदियां कर रहे थे, उनके कजिन्स भी आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने सोना नहीं, तो वो बच्चे एक लय में बोले कल तो छुट्टी है, तो मैंने कहा कि फजर की भी छुट्टी है, तो वो कहते हम फजर पढ़ के सोएंगे। तो वह बता दें हमारे जहनों में, और हम नहीं सोचते कि इसका, और इसकी वजह से बच्चों में जो क्रैंकीनेस आता है, वो स्टबन हो जाते हैं, वो हमारी बातें नहीं मानते, ये हमें इसका अंदाजा कम है। तो लिहाजा अपने आप को मसरूफ भी करे इंसान। फिर इसी तरह आप देखिए आज का प्रोग्राम बनाए, ये अब जो 10वीं चीज है इसमें आप कह लीजिए प्लानिंग, बहुत लंबी मनसूबा, इसका ये नहीं मतलब कि आइंदा की मनसूबाबंदी से गुरेज करें, मतलब ये है कि पहले आज का खाने की तो फिक्र कर लो। हम सोच रहे हैं वो जो दावत हो रही है उसमें क्या खिलाएंगे, शादी में क्या मेन्यू होगा, इतनी लंबी बातें कर रहे होते हैं, पता चले आज रात के लिए तो दाल चावल भी नहीं है। ये मतलब है कि आज के काम करके अगली प्लानिंग्स करें। हमारा हाल क्या है कि आज का कुछ नहीं पता, फ्यूचर के लिए हम रोगी होते हैं, और सच्ची बात है आज बहुत सारे लोग आज को खराब किए हुए हैं अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए, तो मुस्तकबिल तो पता नहीं जब आएगा सो आएगा, और माजी पे परेशान भी ना रहे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगली चीज क्या है, सेहत और रिस्क। सेहत अच्छी जान है तो जहान है, और रिस्क में क्या है, किसी को अपने से कमतर देखें तो अपने आप को बर्तर ना समझे, इसमें आप बर्तर को ना कर लें लफ्ज को हाईलाइट, यानी दूसरों से खुद को बड़ा ना समझे। फिर इसी तरह माजी में होने वाली बुराइयों को भूल जाए, जिस चीज को लौटा नहीं सकते उसके लिए गम क्या खाना, ये भी चीजें बाज दफा बोझ बनती हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि मुसीबत जब पहुंच ही जाती है अल्लाह के हुक्म से, तो उसको कम करने की कोशिश करें, जब मुसीबत पड़े और हम उसको महसूस भी ज्यादा करें तो वो चीज फिर हमारे लिए तकलीफ का सबब होती है। फिर इसी तरह दिल को मजबूत करना, कमजोर दिल नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोग नफसियाती तौर पे जल्दी बीमार होते हैं, फजूल चीजों से अपने आप को पाक कीजिए। फिर इसी तरह अल्लाह ताला पर एतमाद, तवक्कुल, हुस्ने जन, और इसी तरह से फिर पाकीज़ा ज़िंदगी। अपने आप को खूबसूरत तरीके से ढालिए, आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताऊँ कि नफ्सियाती बीमारियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नफ्सियाती में एक तो ये रोग ही है ना जो लगे हुए ना, हसद, बुग़्ज़, बदजुबानी, यानी जो हमारे किरदार के अंदर दूसरों के लिए नेगेटिविटी होती है ना, वो भी इसमें आती है। लेकिन इसके अंदर वो सब कुछ भी है जिसको आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं वजह नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या। पहले लोग कहते थे जादू हो गया या जिन आ गए हैं क्योंकि बीमारी नहीं दिख रही। आज के दौर में लोग उसको साइकाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं, और साइकाट्रिस्ट बेचारा, मैं कहती हूँ कि वो जितनी लोगों की बातें सुन के पैसे ना ले रहा हो इतने ज्यादा, तो वो खुद साइकोलॉजिकल मरीज बन जाए। माइक ले लीजिए।
तो होना जा रहा है जब सर्दियां भी हो जाएंगी, और उसमें हम रूटीन बना लें कि तहज्जुद के वक्त उठ के तहज्जुद पढ़ के और फजर तक जो है उस टाइम को हम अवेल कर लें, तो उससे हमारी सारी दिन की और जो भी इल्म भी हम लेते हैं उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और हमें काम करने की दिन के कामों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है
जी
अगर हम रात ईशा से तहज्जुद तक सो लें और तहज्जुद से
देखिए, ये तो
फजर
अल्लाह
तक।
ने कुरान में भी कह दिया ना, इन्ना नाशियतल लैल ही अशद वतम वक्फा मुकीला, कि रात का जागना नफ्स को सीधा रखता है और बात सीधी निकलती है, यानी नफ्स दबता है। ये जो नफ्स है ना, ये भी एक शरारती बच्चे की तरह होता है। उसकी जितने लाड आप देखेंगे वो उतने लाड दिखाएगा, जितनी उसकी बातें मानेंगे वो उतनी बातें मनवाएगा। तो बस कंट्रोल करना है।
अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे पूछना था कि अगर अल्लाह पे तवक्कुल हो और जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उस पे भी पूरी कोशिश करती हूँ, करती रहूँगी इंशाल्लाह, फिर भी सारा कुछ करते हुए भी ये सारी चीज़ें सिम्टम में हों, क्या फिर क्या करना चाहिए?
फिर थोड़ी डोज बढ़ा दें। ये इनका सवाल है कि ये सब जो पढ़ रहे हैं ये है भी फिर भी नफसियाती मरीज हैं, तो इसके अंदर के दवा खा तो रहे हैं लेकिन उसकी डोज थोड़ी कम है, ज्यादा कर दें। जो जो करें उन सब में अपनी बेहतरी पैदा करें, आप देखिएगा बेहतरी होगी इंशाल्लाह। जी आप
तो ये चीजें रहती नहीं है ना इंसान के अंदर, और जितना आपका तवक्कल बढ़ता जाता है उतने लाइक आप टेंशन फ्री हो जाते हो, जहां तक मेरा अपना आजमाया हुआ ना।
जी, जब आपके हाथ में है ही कुछ नहीं, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करूं। सब छोड़ दें, हैंड्स अप, कि अल्लाह ताला मैंने सब कुछ तेरे ऊपर डाल दी। हमारा हाल पता है कि अल्लाह को दे के फिर भी थोड़ा सा अपने हाथ में रखते हैं, नहीं फिर ना हुआ तो क्या होगा। हजरत मूसा की माँ ने अपने बच्चे को समंदर में डाल दिया था, अगर सात सिरा डोरी पकड़ी होती तो पता लग जाना था लोगों को ये इस औरत का बच्चा। तवक्कुल है ही क्या, कि ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह। ट्राई फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेहतरीन की उम्मीद रखें लेकिन बदतरीन के लिए तैयार है, और जो भी होगा मैं राजी हूं, मेरे रब का ये फैसला, क्योंकि कमी उधर ही है। अल्लाह ही से ताल्लुक टूटता है तो फिर ही हमारी हालत खराब होती है। चलें, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।